आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर।
SBS हिंदी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है नबील और एक नया शो और एक नई शाम में एक बार फिर से हमारी मुलाकात हो रही है। शो शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलीन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईवुरुंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी टॉरेस स्ट्रेट आईलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदरपूर्वक याद करते हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज कौन कौन सी रिपोर्ट्स आने वाली हैं से पहले उसके बारे में बता दें आपको। तो कल शाम जैसे कि आप जानते हैं कि फेडरल बजट की घोषणा हुई थी, तो उसी पर हमारी पहली रिपोर्ट है। आज के शो में हम फेडरल बजट 2026 के बड़े फैसलों, आरबीआई गवर्नर और अर्थशास्त्रियों की चेतावनियों और सुधारों की कठिन राह पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसका सीधा असर आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा। इसके बाद होगी इंडिया रिपोर्ट, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए भारत की कुछ खास खबरें और अंत में कैनबरा से एक खास मुलाकात संतोष गुप्ता जी के साथ, जिन्होंने 20 साल पहले हिंदी स्कूल की शुरुआत की थी। ये रिपोर्ट दो भाग में होगी जो हम आज आपको सुनाएंगे। तो ये सारी रिपोर्ट्स एक एक करके आएंगी और उससे पहले हम सुन लेते हैं आज का न्यूज फ्लैश। बुधवार 13 मई की खास खबरों के साथ मैं हूं नबील हसन। डिसेबिलिटी समर्थकों ने फेडरल बजट में NDIS यानी नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम में किए गए बदलावों पर चिंता जताई है। इन बदलावों के तहत 2030 तक 1,60,000 से अधिक लाभार्थियों को स्कीम से बाहर करने की योजना है। इन बदलावों का उद्देश्य अगले 4 वर्षों में लगभग $38 बिलियन की बचत करना है। इसके साथ ही एलिजिबिलिटी तय करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट प्रोसेस भी लागू किया जाएगा। डिसेबिलिटी एडवोकेसी नेटवर्क की चेरी बेलोसिस ने SBS को बताया है कि इस बदलाव से बनने वाले गैप को भरने के लिए एक मजबूत और उपयुक्त ऑल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में पहले से रह रहे स्किल्ड प्रवासियों को फेडरल बजट में घोषित माइग्रेशन प्रोग्राम के बदलावों से फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार के अनुसार 1,85,000 परमानेंट माइग्रेशन प्लेसेस में से 70% से अधिक जगह स्किल्ड वर्कर्स के लिए रखी गई हैं। इनमें से 2/3 से ज्यादा वीजा उन प्रवासियों को मिलेंगे जो पहले से ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। वहीं ऑफशोर यानी बाहर से आवेदन करने वाले स्किल्ड एप्लीकेंट्स के लिए केवल 55,000 जगह आरक्षित की गई हैं। बजट पेपर्स के अनुसार ये बदलाव नेट ओवरसीज माइग्रेशन को कम करने के उद्देश्य से किए गए हैं। साथ ही रिवाइज्ड पॉइंट्स टेस्ट में युवा, हाईली स्किल्ड और बेहतर एजुकेटेड माइग्रेंट्स को प्राथमिकता दी जाएगी। फेडरल बजट में ये भी पुष्टि की गई है कि 2025-26 में नेट ओवरसीज माइग्रेशन का आंकड़ा 2,95,000 रहेगा, जो पिछले साल के बजट फोरकास्ट से 35,000 ज्यादा है। 3 साल पहले न्यू साउथ वेल्स के एक नर्सिंग होम में एक 95 वर्षीय महिला की मौत के बाद अब डिमेंशिया पेशेंट्स की देखभाल और एग्रेसिव घटनाओं पर प्रतिक्रिया को लेकर न्यायिक जांच शुरू की जाएगी। मई 2023 में यलम्बी लॉन्च में तत्कालीन सीनियर कांस्टेबल क्रिश्चियन वाइट द्वारा टेजर चलाने की वजह से क्लेयर नोलैंड की मौत हो गई थी। उन्हें डिमेंशिया के लक्षण थे, वो गिर गईं और उनके सिर में गंभीर चोट लगने से दिमाग में खून बहने लगा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। 2024 में सीनियर कांस्टेबल क्रिश्चियन वाइट को मैन स्लॉटर का दोषी पाया गया था और बाद में उन्हें 2 साल के गुड बिहेवियर बॉन्ड की सजा सुनाई गई। विक्टोरियन सरकार ने मेलबर्न के हॉस्पिटैलिटी वेन्यूज में सुरक्षा बढ़ाने के लिए $15 मिलियन की घोषणा की है। ये फैसला हाल ही में हुए कई आर्सन अटैक्स की घटनाओं के बाद लिया गया है। اس فنڈ کا اپیوگ سیکیورٹی کیمراز، دروازوں، الارمز اور فائر سپریشن سسٹمز کو اپ گریڈ کرنے میں کیا جائے گا۔ وینیوز کو یہ وکلپ بھی دیا جائے گا کہ وہ اپنے سی سی ٹی وی کے لائیو فیڈز سیدھے پولیس کو اسٹیٹ کمانڈ اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر کے ذریعے اپلبدھ کرا سکیں، جو 24 گھنٹے سنچالت ہوتا ہے۔ وکٹوریا پولیس منسٹر اینتھنی کابینز نے کہا ہے کہ یہ فنڈنگ رسپانس ٹائمز کو بہتر بنائے گی اور آگے ہونے والے حملوں کو روکنے میں مدد کرے گی۔ لاس اینجلس کے ایک سبرب کے میئر نے سویکار کیا ہے کہ وہ چائنا کے لیے فورن ایجنٹ کے روپ میں کام کر رہی تھیں۔ 58 ورشیہ ایلین وینگ، جو آرکیڈیا کی میئر ہیں، نے اس معاملے میں ایک فیلنی چارج کے لیے دوش سویکار کرنے پر سہمتی جتائی ہے۔ اس آروپ میں ادھکتم 10 سال تک کی جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سویکار کیا ہے کہ وہ 2020 سے 2022 کے بیچ آن لائن چائنیز پروپاگانڈا کو بڑھاوا دے رہی تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے چائنیز گورنمنٹ ہینڈلرز کے نردیش پر پرو چائنا پوسٹ کیے تھے، جن میں شنجیانگ میں ویگر کے ساتھ کسی بھی طرح کے درویوہار سے انکار کرنا بھی شامل تھا۔ اور اب خبر بھارت سے۔ کیندر سرکار نے سونا اور چاندی پر امپورٹ ڈیوٹی 6% سے بڑھا کر 15% کر دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد ایم سی ایکس پر سونا قریب 10,000 روپے اور چاندی لگ بھگ 18,000 روپے تک بڑھ گئے۔ سرکار نے سونے اور چاندی پر 10% بیسک کسٹمز ڈیوٹی اور 5% ایگریکلچر انفراسٹرکچر اینڈ ڈیولپمنٹ سیس لگایا ہے۔ سرکار کا کہنا ہے کہ اس کا ادیشیہ ودیشی خرید کم کرنا، ٹریڈ ڈیفیسٹ گھٹانا اور فورن ایکسچینج ریزروز پر دباؤ کم کرنا ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی نے حال ہی میں لوگوں سے ایک ورش تک سونے کی خرید سے بچنے کی اپیل بھی کی تھی۔ یہ تھا آج کا نیوز فلیش نبیل حسن کے ساتھ۔ انیہ خبروں اور جانکاری کے لیے بنے رہیے SBS ہندی پر۔ ہماری ویب سائٹ ہے sbs.com.au/hindi۔ آپ سن رہے ہیں SBS ہندی، اور آگے بڑھنے سے پہلے ہماری پہلی رپورٹ آنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارا فون نمبر آپ کو بتا دیں 0439-799-767، جس پہ آپ میسج کر سکتے ہیں، کوئی بھی سندیش بھیج سکتے ہیں، اور اپنا نام ضرور لکھیے گا، ہمیں آپ کے میسیجز کا انتظار رہتا ہے۔ اور آج ایک سوال ہم میسج پہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بنج واچ جو ایک چیز ہوتی ہے، جو آج کل بہت ٹرینڈ میں ہے، کہ آپ ایک ہی بار میں پوری سیریز دیکھ لیتے ہیں یا پورے سارے ایپیسوڈ دیکھ لیتے ہیں، تو اگر ہم موویز کی بات کریں کہ او ٹی ٹی کے زمانے سے پہلے جب ہم لوگ فلموں کا ایک دور تھا، جب فون پہ اسکرولنگ اتنی نہیں ہوتی تھی، تو کئی ساری موویز ہوتی تھیں جو آپ کو بہت پسند ہوتی تھیں اور آپ کی فیوریٹ بن جاتی تھیں، اور آپ انہیں ایک بار نہیں کئی بار دیکھنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ ایسی کون سی فلم ہے جو آج بھی اگر ٹی وی پہ آ جائے اور پرانی ہوں اور آپ دیکھ چکے ہوں، لیکن پھر بھی دیکھنے کا من کرتا ہے؟ 0439-799-767 پر میسج کر کے بتائیے آپ کی فیوریٹ مووی، جو ایک سے زیادہ بار آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمیشہ اسے پسند کریں گے۔ چلیے آگے بڑھیں گے اور پہلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں، جو ہے فیڈرل بجٹ سے جڑی۔ کیا رہے فیڈرل بجٹ 2026 کے بڑے فیصلے اور کیسے پڑے گا اس کا آپ کی جیب پر اثر؟ کیا تھی آر بی اے گورنر اور ارتھشاستریوں کی چیتاونی، اور کیوں ہے کٹھن ڈگر سدھار کی؟ جانیے اس آڈیو پوڈ کاسٹ میں، جو پرستت کر رہی ہیں آپ کے لیے ورشالی جین۔
کوشادھیکش جم چارمرز نے 2026 کا بجٹ پیش کر دیا ہے۔ اسے انہوں نے سدھاروں کا ایک کٹھن راستہ بتایا ہے۔ اس بجٹ کے کیندر میں آواز سے جڑے ٹیکس بدلاؤ اور نیشنل ڈسیبلٹی انشورنس اسکیم یعنی NDIS میں سدھار کے ذریعے $35 ارب کی بچت شامل ہے۔ نمسکار، میں ہوں ورشالی جین، اور اب فیڈرل بجٹ 2026 پر لا رہی ہوں وہ انش جہاں چرچا ہوگی کیسے لیبر سرکار اس بجٹ کو نیانترت خرچ والے بجٹ کے روپ میں پیش کرنا چاہتی ہے۔ بجٹ سے پہلے ارتھشاستریوں اور ریزرو بینک کی گورنر مشیل بلاک نے چیتاونی دی تھی کہ اتیادھک خرچ سے مہنگائی بڑھ سکتی ہے اور بیاز دروں میں اور بڑھوتری کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کوشادھیکش جم چارمرز اپنے 5ویں بجٹ کو پیش کرنے کی تیاری کے سمے سے سنکیت دے رہے تھے کہ سدھاروں کی ڈگر کٹھن ہی ہوگی۔
This budget makes a number of difficult decisions in the near term and in the longer term to get our budget into better nick to reform our tax system and to deal with some of these issues which have been left unattended for too long.
वित्त मंत्री कैटी गैलेगर ने भी चैनल 7 के कार्यक्रम सनराइज पर इसी तरह का संदेश दिया था.
You know, people expect governments to make the right decisions for the right time. Governments also have to make sure we're dealing with all of these really difficult issues. We can't put our head in the sand.
अब बजट पेश किया जा चुका है तो हमें साफ तौर पर पता चल गया है कि ये सुधार कैसे दिखेंगे. कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स ने संसद से कहा है कि मध्य पूर्व में जारी युद्ध कीमतों को बढ़ा रहा है, आर्थिक विकास को धीमा कर रहा है और ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है.
We were already dealing with price pressures in our economy, but Treasury is now forecasting inflation to peak around 5% in the middle of the year because of the conflict. For the same reasons, it's expecting growth to come in half a percentage point lower next financial year to be 1.75% overall.
उन्होंने कहा कि इसीलिए ये बजट ऑस्ट्रेलिया को वैश्विक तेल संकट से बाहर निकालने और ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने पर केंद्रित है जो ज्यादा लोगों के लिए काम करे.
The core of this budget is an economic strategy with five main parts. Getting through the global oil shock and building resilience. Taking the pressure off people where we can. Making the economy more productive to lift living standards over time. Reforming the tax system for workers, businesses and future generations, including a new tax cut for every working Australian taxpayer.
Yeah.
And making the budget stronger, more sustainable and helping to take the pressure off inflation by saving more than we spend.
युद्ध के असर से निपटने में ऑस्ट्रेलियाई लोगों की मदद करने की योजना के तहत ईंधन सुरक्षा पैकेज भी शामिल किया गया है, जिसकी घोषणा पहले ही प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीजी ने की थी.
The strengthening Australia's fuel resilience package will deliver more fuel for drivers and industry, more fertilizer for farmers, and more fuel security for our economy. Its centerpiece is a $10 billion investment in immediate fuel supplies and a permanent Australian fuel security reserve to get the fuels and fertilizer that we need.
ऑस्ट्रेलियाई लोगों को जीवन यापन की बढ़ती लागत से राहत देने के लिए और अधिक टैक्स कटौतियों की घोषणा की गई है.
This government cut taxes 2 years ago. We're cutting them again this year and next year too. We will put more money into the pockets of 13.3 million workers with a new $250 working Australians tax offset. Averaged out over the year, our three tax cuts, our instant deduction and the new offset are the equivalent of up to $54 back in the average earner's pocket each week.
और जैसा कि वादा किया गया था, कई हफ्तों की अटकलों के बाद कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स ने टैक्स व्यवस्था में बदलावों की पुष्टि की है. उनका कहना है कि इससे आवास व्यवस्था सभी के लिए अधिक निष्पक्ष बन सकेगी.
House prices have decoupled from incomes. Since 1999, house prices have risen over 400%, more than twice as fast as average incomes. Our tax changes will help about 75,000 Australians achieve the dream of home ownership. We'll limit negative gearing for residential property to new builds from July next year.
Yeah.
And we're replacing the 50% capital gains tax discount with inflation-adjusted indexation to restore the taxation of real gains. We'll also introduce a minimum 30% tax rate on capital gains from July next year and on discretionary trusts from July the year after.
रक्षा, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में बड़े खर्च वाले कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की गई हैं।
This budget includes another $25 billion for public hospitals. We're also investing $5.9 billion to list more medicines on the pharmaceutical benefits scheme, so Australians continue to access life-changing medicines at cheaper prices.
कोषाध्यक्ष जिम चार्मर्स का कहना है कि नया प्रोडक्टिविटी पैकेज अधिक निवेश आकर्षित करने और उसे अर्थव्यवस्था में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, ताकि अधिक लोगों के जीवन स्तर और वेतन में सुधार हो सके. साथ ही कौशल आकलन और पेशेवर लाइसेंस प्रक्रियाओं को तेज किए जाने के बाद हर साल अतिरिक्त 4,000 प्रवासी ट्रेड वर्कर्स को कार्यबल में शामिल होने की अनुमति मिल सकेगी. हालांकि अर्थशास्त्रियों और रिजर्व बैंक की गवर्नर मिशेल बुलक की चेतावनियों के बाद लेबर सरकार इस बजट को नियंत्रित खर्च वाला बजट बताने पर जोर दे रही है. उनका कहना था कि अत्यधिक खर्च महंगाई को बढ़ा सकता है और ब्याज दरों में और बढ़ोतरी का खतरा पैदा कर सकता है. कोषाध्यक्ष का कहना है कि बजट में 63.8 अरब डॉलर की बचत का प्रावधान किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS के खर्च में बदलावों से आएगा।
A big part of our savings package will restore the NDIS to its original intent and secure its future so it grows in a sustainable way in line with programs like Medicare.
Mm-hmm.
This difficult but necessary reform will save $37.8 billion over the forward estimates.
कोषाध्यक्ष जिम चामर्स का ये भी कहना था कि इस वर्ष के बजट में किए गए फैसले आवश्यक हैं।
Faced with a choice between resilience or reform, this budget demonstrates that our government and our country are capable of both.
Yeah.
We choose the hard road of reform, not the path of least resistance. By responding to the pressures that Australians confront today and fulfilling our obligations and our responsibilities to the generations to come.
SBS News से डेबोरा ग्रॉक की इस खबर को आपके लिए SBS हिंदी से प्रस्तुत किया वृषाली जैन ने।
आपने अभी सुनी वृषाली जैन की रिपोर्ट फेडरल बजट 2026 से जुड़ी। अगर आपको ऐसी हमारी कोई भी रिपोर्ट फिर से सुननी है या आप से मिस हो गई है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं sbs.com.au/hindi। इस रिपोर्ट से पहले हमने आज का सवाल पूछा था कि वो कौन सी मूवी है जो आप एक नहीं कई बार देख सकते हैं, और दो मैसेजेस आए हैं और बड़े मज़ेदार मैसेजेस हैं क्योंकि दोनों ने लिखा है कि उन्होंने कितनी बार ये मूवी देखी है। नितिन लिखते हैं कि मैंने 17 बार हम आपके हैं कौन मूवी देखिए और मैं इसे कई बार और देख सकता हूं। वहीं हिरेन लिखते हैं कि मैंने कभी अलविदा ना कहना ये मूवी देखी है पूरे 50 बार और ये उनकी सबसे पसंदीदा मूवी है। 04397997667 पर आप भी लिख भेजिए कि वो कौन सी मूवी है जो आपकी बहुत पसंदीदा है और शायद टीवी पे आए या आप उसको इंटरनेट पे देखना चाहें तो आप जब चाहें जिस वक्त चाहें उसको फिर से देखने में हिचकिचाएंगे नहीं। 04397997667 हमारा नंबर है। जब तक आपके मैसेजेस आते हैं एक एड ब्रेक लेते हैं और एड ब्रेक से वापस आकर आपको सुनाएंगे भारत की कुछ खास खबरें इंडिया रिपोर्ट में। SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है एड ब्रेक के बाद। और एड ब्रेक से पहले जो हमने एक आपको मैसेज पूछा था उसका एक और जवाब आया है और क्यूरी से मैसेज आया है। वो लिखते हैं कि कभी हाँ कभी ना, आई मस्ट हैव वॉच दिस मूवी 20 times एंड आई लव इट। आप ही अपना मैसेज भेजिए कि आपकी कौन सी मूवी फेवरेट है। अभी तक हमें कभी हाँ कभी ना, कभी अलविदा ना कहना और हम आपके हैं कौन, इनके जो फैंस हैं उन्होंने मैसेज करा है। 04397997667 हमारा नंबर है। आपके जब तक मैसेजेस आते हैं हम आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं इंडिया रिपोर्ट जिसमें होंगी भारत की कुछ खास खबरें।
भारत की अध्यक्षता में कल से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है। 2 दिनों तक नई दिल्ली में चलने वाली इस बैठक में सदस्य देशों के बीच वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे के चलते चीनी विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। वैसे बैठक में सदस्य देशों के अलावा साझेदार देशों के प्रतिनिधि भारत आ रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल इस बारे में बताते हैं।
इंडिया विल होस्ट द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ऑन 14th and 15th May 2026। The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegations from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20. Building for resilience, innovation, cooperation and sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के दौरे पर जाने वाले हैं। इसके अलावा वे 4 यूरोपीय देशों के दौरे पर भी जाएंगे। UAE के दौरे को भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। रणधीर जायसवाल इस दौरे को अहम बताते हुए कहते हैं।
पहला पड़ाव प्रधानमंत्री का वो संयुक्त अरब अमीरात का होगा। जैसा कि आप जानते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के साथ हमारे बहुआयामी रिश्ते हैं, लेकिन उसमें ऊर्जा सुरक्षा बहुत अहम एक उसका भाग्य है, और इस दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सकें, साथ ही साथ जो व्यापार के मुद्दे पे और निवेश के मुद्दे पे भी किस प्रकार का सहयोग हो सकता है दोनों देशों के बीच में और कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, सोना न खरीदने जैसी 7 अपीलें की हैं। सोना पर आयात शुल्क भी सरकार ने बढ़ा दिया है। इसको लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष इसे अर्थव्यवस्था की कमजोरी से जोड़कर देख रहा है। रासायनिक खाद का इस्तेमाल 50% करने पर किसान संगठनों ने भी सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि अर्थव्यवस्था की सही स्थिति बताई जाए।
आपने हमें कहा हम सब देशवासी देशभक्त हैं, कठोर से कठोर कदम भी उठाएंगे, कठोर से कठोर अपने को अगर हमें कठिनाइयां बर्दाश्त करनी पड़ी, कुर्बानियां देनी पड़ी देश के लिए वो भी करेंगे, लेकिन पता तो चले कि ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं, पता तो चले कि अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है। केवल आदेश भर दे देने से तो काम नहीं चलेगा ना, ये देश हम सब लोगों का है, ये देश हम 140 करोड़ लोगों का है। तो प्रधानमंत्री जी से मेरा पहला निवेदन है कि वो पूरा आज हमारी क्या स्थिति है, अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी की क्या स्थिति है, और आने वाले समय में कुछ महीनों में या एक साल में हमारी क्या स्थिति होने का अंदेशा है, इसके ऊपर सारी जानकारी देश के लोगों के साथ साझा करें।
प्रधानमंत्री की अपील का उनकी पार्टी भाजपा ने बचाव किया है। भाजपा इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहते हैं,
उस अर्थव्यवस्था पे उंगली उठा रहे हैं जो आज पूरे विश्व में फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है। जहां यूपीए के समय में इन्फ्लेशन 10-11% होता था, आज इन्फ्लेशन की कोई बीमारी हमारी अर्थव्यवस्था को नहीं लगी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसकी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सोना मत खरीदिए, कम से कम एक साल तक विदेशी यात्राओं पे मत जाइए, जिससे जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कम ना हो। और ये कोई मूलभूत जरूरत नहीं आम आदमी की हो सकती है।
प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका के दबाव में काम करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। खासतौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री पर हमले बोल रहे हैं। गौरव भाटिया पलटवार करते हुए कहते हैं,
सुन ले राहुल गांधी, वो कॉम्प्रोमाइज पीएम की बात करते हैं, एक एक बूंद जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रगों में है खून की, वो देश हित और भारत के लिए। कॉम्प्रोमाइज कोई है तो वो राहुल गांधी है, जो विदेशी धरती पे जाके जो ताकतें भारत विरोधी हैं उनसे बातचीत करता है, षड्यंत्र रचता।
पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी को लगातार घेरने वाले राहुल गांधी ने सीबीआई डायरेक्टर की चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास पर इस बारे में हुई बैठक में शामिल भी हुए। उन्होंने योग्य उम्मीदवारों की विस्तृत जानकारी मुहैया न करने का आरोप सरकार पर लगाया। चयन समिति को औपचारिकता बनाने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने अपनी असहमति दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष का नेता कोई रबर स्टैंप नहीं है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास में हुई बैठक में देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत भी शामिल हुए थे। और अब बात नीट पेपर लीक की, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेर रही है। नीट यानी देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा,
ये बार बार हो रहा है, ये गवर्नमेंट इसके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे मुझे समझ में ना, और ये बार बार मध्य प्रदेश यूपी बिहार ऐसे जगह में ही होता है, थ्रू आउट कंट्री और कहीं जगह नहीं होता। इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला है और कोई इसको ध्यान नहीं देना दे रहे हैं। इससे पूरे हमारे स्टूडेंट्स के भविष्य को ये लोग खराब कर रहे हैं।
आरोपों के बाद परीक्षा को संचालित करने वाली एजेंसी एनटीए ने परीक्षा को रद्द कर दिया है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात एनटीए ने कही है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्व रत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।
SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील। और आगे पढ़ने से पहले कुछ और मैसेजेस पढ़ लेते हैं। हमने पूछा था कि वो कौन सी मूवी है जो आप एक बार नहीं कई बार देख सकते हैं, और किसी ने लिखा था हम आपके हैं कौन, किसी ने कहा कभी अलविदा ना कहना, और कभी हाँ कभी ना। अब दो जो नए मैसेजेस आए हैं, सुरेंद्र चावला जी क्रैनबर्न से लिखते हैं कि देवानंद की मूवी शराबी उन्हें बहुत पसंद है और उन्हें वो कई बार देख चुके हैं। और एक और मैसेज आया है ऋषि शर्मा का कैनबरा से, वो लिखते हैं कि शोले, आई थिंक ये न जाने कितने लोगों की फेवरेट होगी कि शोले मूवी वो जब भी आती है वो फिर से देखते हैं। तो शराबी एक नई मूवी का नाम है जो मेरे लिस्ट में है, मैंने नहीं देखी है, मुझे लगता है बाकी मूवीज़ देखी हुई हैं। और इस सूची में मैं अगर अपनी पसंदीदा मूवी जोड़ूं तो दिल चाहता है जो आई थी और उस वक्त बहुत मशहूर हुई थी, और तीन दोस्तों की जो ये कहानी थी वो मुझे बहुत पसंद है, और शायद इसलिए भी क्योंकि आमिर खान मुझे बहुत पसंद है, तो वो मूवी मुझे बहुत पसंद है। और आप ही बताइए आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, 04397997667 पर अपने नाम के साथ ज़रूर मैसेज करिए। और मुझे लगता है आज बहुत लोगों को बहुत सारी फिल्मों का आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा ये भी देखते हैं जो हमारे बाकी लिसनर्स देखते हैं। तो इंतज़ार रहेगा आपके मैसेज का 04397997667 पर आपकी फेवरेट मूवी जो आप एक नहीं कई बार देख सकते हैं। एड ब्रेक के बाद आपको वापस मिलता हूँ, सुनते रहिए SBS हिंदी। मेरा नाम है नबील। SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील, और आज मैसेजेस की भरमार हो गई है। हमने आज शो के शुरुआत में पूछा था और बीच बीच में भी कि वो कौन सी एक मूवी है जो आप फिर से देख सकते हैं एक बार नहीं बल्कि कई बार, और सब अपनी फेवरेट मूवीज़ के नाम बता रहे हैं। और जो अभी अभी तीन मैसेजेस आए हैं उनको पढ़ देता हूँ मैं। व्हीलर्स हिल से पीयूष जी लिखते हैं कि थ्री इडियट्स उनकी सबसे फेवरेट मूवी है। कमल जी सिडनी से लिखते हैं रहना है तेरे दिल में, वो कई बार दे सकते हैं। और जय श्री कृष्णा, उन्होंने हमें मैसेज भी किया है। और इसके साथ मेलबर्न से अली हमजा वर्क कहते हैं कि लैला मजनू उनकी पसंदीदा मूवी है। तो आप भी बताइए 04397997667 पर कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। और शो के अंत में मेरा मन है कि आज जितनी भी मूवीज़ के सजेशन आए हैं एक वो लंबी सी लिस्ट एक बार फिर से आप सबके लिए पढ़ ली जाए ताकि आपको भी आइडिया मिले कि लोगों की क्या क्या पसंद है और कौन कौन सी फिल्में हैं जो आपने नहीं देखी वो आप एक बार फिर से देख सकते हैं या एक बार शुरुआत कर सकते हैं उसको देखने की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारी जो आखिरी रिपोर्ट है शो की वो आपके लिए प्ले करेंगे। ये जो रिपोर्ट है दो भागों में है। आज हम मुलाकात कर रहे हैं कैनबरा में संतोष गुप्ता जी के साथ, जिन्होंने वहाँ 20 साल पहले हिंदी स्कूल की शुरुआत की थी। आइए अनीता बरार के साथ उनकी इस बातचीत में जानते हैं कि अब हिंदी को लेकर वहाँ आगे क्या हो रहा है। जैसे मैंने पहले बताया ये रिपोर्ट दो भाग में है, आइए सुनते हैं इसका पहला अंश।
नमस्कार, SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार। जानते हैं कैनबरा में हिंदी स्कूल के इस वर्ष फरवरी में 20 वर्ष पूरे हुए हैं और अब उम्मीद हो चली है कि हिंदी एक विषय के तौर पर प्राइमरी स्कूल में शिक्षा के करिकुलम में शामिल हो सकती है। आज हमारे साथ जुड़े हैं कैनबरा से संतोष गुप्ता जी, जिन्हें हाल ही में ACT आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट अवार्ड मिला फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, यानी कम्युनिटी सर्विस के लिए, जिसमें हिंदी लैंग्वेज स्कूल की स्थापना और अन्य संगठनों के साथ उनके काम और अब उनका प्रयास कि हिंदी स्कूली पढ़ाई में शामिल हो जाए। तो स्वाभाविक रहा उनसे ये पूछना कि कैनबरा में हिंदी स्कूल की आवश्यकता उन्हें कब और क्यों महसूस हुई, तो वो बताते हैं।
अनिता जी, जब मैं जो है कैनबरा आया 2005 में और मेरा बेटा उस समय केवल एक साल का था, तो मेरे को लगा कि अंग्रेजी तो मेरे बेटे की अच्छी हो जाएगी, तो हिंदी का साथ में कैसे कर सकते हैं कि हम अपनी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता के और जो चीजें हैं उनको कैसे उसको उसके साथ ला सकते हैं। तो मेरे को लगा कि यहाँ पर एक हिंदी स्कूल की बहुत ही आवश्यकता है। तो उस समय हम लोग ने फिर काफी लोगों के साथ मिलकर एक संस्था बनाई जिसका नाम है हिंदी समाज ऑफ कैनबरा, और उसी के साथ फिर हमने जो है कैनबरा हिंदी स्कूल की शुरुआत की।
तो आसान था शुरू करना, कुछ चुनौतियां तो आई होंगे कि सब लोग आपकी तरह कैसे सोचने लग गए?
जी, चुनौतियां इस समय बहुत थी क्योंकि ये यहाँ पर शुरुआत थी और किसी को भी ऐसी जो है चीजों की मतलब पता भी नहीं था। तो कोई भी जैसे स्कूल शुरू करना है तो उसके लिए हमको ACT कम्युनिटी लैंग्वेज स्कूल्स एसोसिएशन का मेंबर बनना होता है। तो उसके साथ क्योंकि जब आप किसी स्कूल में जैसे हायर करते हैं क्लासरूम्स, तो हमको क्लासरूम्स हायर करना था कोई अच्छी जगह। उस समय कैनबरा में बहुत सारे हिंदी भाषी लोग नहीं थे, वॉलेंटियर्स थे, उनको दिखाना कि भाई आप आइए और हमारे साथ जुड़ के हम बच्चों को जो है 5 साल से 17 साल तक के बच्चों को हिंदी पढ़ाना चाहते हैं। तो उस समय काफी चुनौतीपूर्ण था क्योंकि कोई भी स्कूल में क्लासरूम करने के लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, और वो सारे जो खर्चे हैं और टीचर्स को है रूम हायर करने का है, तो काफी चुनौतियां थी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ कारवां बहुत बढ़ता गया और आज हमको बड़ी खुशी है कि हमने 20 साल पूरे किए।
जी, जो आपने समुदाय के लिए काम किया इसके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है। अब आप स्कूलों में बाकायदा पढ़ाई की तरह भी इसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक स्कूल में भी आ जाए, तो उसकी बात भी मैं करती हूँ। लेकिन देखिए, हमारे साथ जुड़े हैं आत्रेय जो इस समय 9वीं क्लास में है। तो आत्रेय, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप हिंदी के साथ में जुड़ तो गए हैं, लेकिन क्या था जिससे आपको लगा कि हिंदी सीखनी चाहिए?
मेरा पहले याद है कि मैं 3 साल का था और मेरे दादा दादी बात कर रहे थे पापा से, और उसके बाद मेरे को नहीं आता था हिंदी उस समय। तो मैं पापा को बोला, दादी और दादू क्या बोल रहे हैं? पापा बोले, हिंदी में बात कर रहे हैं। और उसके बाद मैं बोला, मैं भी हिंदी सीखूंगा। तो 3 साल से मैं 3 साल का था तब से मैं हिंदी स्कूल में जो रहा हूँ।
तो इसमें सबसे मजेदार बात क्या लगी थी हिंदी सीखने में, और कहाँ पे लगा कि ये तो बहुत मुश्किल चीज हो रही है?
तो पहले साल बहुत कठिन थी, एनी लैंग्वेजेस हार्ड, मात्रा के साथ आधा आधा और सब कुछ के साथ बहुत कठिन लगा। लेकिन मेरे को लगा कि मैं ये करके करूंगा क्योंकि मेरे को दादी दादू और सब लोग से बात करना है।
वाह, क्या बात है। तो मकसद आपका बात करना ही रहा, घर वालों से जुड़ना रहा, या उसके अलावा भी कोई?
मेरा घर वालों हुआ था, और हिंदी जैसे बाहर है तो सीक्रेट लैंग्वेज बन जाता है क्योंकि सबको हिंदी नहीं पता, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं हिंदी में। आपके घर वाले को बाहर कुछ बोलना है कि यहाँ मत जाओ या इससे मत बात करो, आप बोल सकते हैं।
हाँ, एक हथियार बन गया आपके लिए कि धीरे से कोई बात कर ली। तो घर में आप हिंदी बोलते हैं?
हाँ, इंग्लिश और हिंदी का दोनों का मिक्स है।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, उसमें कहीं पे क्या कुछ झिझक है हिंदी सीखने की, या कहीं लगता है कि नहीं ये नहीं सीखनी, कोई और भाषा सीखनी है?
तो मैं कैनबरा पब्लिक स्कूल में सीखा हूँ, प्राइमरी स्कूल। तो बहुत लोगों है कि दे वांट टू लर्न अ डिफरेंट लैंग्वेज। तो एंड आई वुड थिंक इन कैनबरा हिंदी is a very core part I've seen. Okay. So I think a lot of people will be very, if it was implemented into public schools, it will be very, very beneficial, not only to the Hindi community, but to the wider community. They'll be able to understand our language. And it's not
मतलब
just about language, you'll also teach culture and traditions, so people understand India as a whole more.
तो मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि क्या कोई खास ऐसा पार्ट है कल्चर का जो आपको लगता है कि ये सबसे अलग है हमारा?
So, festivals like Holi and Diwali, I
हाँ
haven't seen in any other culture. I've learned
हाँ
over three or four languages, but Holi and Diwali are like they're interlinked, it's almost, but they're not. So they're very interesting festivals.
तो आप भारत
हाँ
जाते हैं?
हाँ
कोई खास पसंद की जगह है भारत में आपके?
आत्रेय जी को भारत में कौन सी जगह पसंद है जानते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ और मैसेजेस पढ़ लेते हैं जिन्होंने भेजा है अपनी फेवरेट मूवीज के बारे में कि उनको कौन कौन सी मूवी पसंद है। तो एक मैसेज जो आया है एक है राजेंद्र वोरा जी क्रेगी बर्न से। वो लिखते हैं कि 2 बीघा जमीन ये उन्हें बहुत पसंद है और ये कई बार देख सकते हैं। चेतन शाह जी लिखते हैं कि आई हैव सीन परिचय एंड छोटी सी बात मोर देन 5 टाइम्स एंड आई हैव सीन साउंड ऑफ म्यूजिक मोर देन 10 टाइम्स। तो ये शायद एक दो नए नाम हैं जो हमें सुनने को मिल रहे हैं। एक और मैसेज आया है जो लिखती है हाय आई एम नेमी, माई फेवरेट मूवी इज टार्जन द वंडर कार और मैंने इसको लगभग 25 बार देखा है। रणधीर जी लिखते हैं कि तनु वेड्स मनु बहुत ही जबरदस्त मूवी है, बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है। और एक और मैसेज आया है ब्रिस्बेन से सकावत इमन, माफ करिएगा अगर मैंने गलत प्रोनाउंसिएशन किया है, लेकिन उन्होंने लिखा है कि मेरी फेवरेट मूवी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और इस मूवी को मैं एक बार नहीं बल्कि कई बार देख सकता हूँ। चलिए आप भी अपने मैसेजेस भेजते रहिए 0439-799-767 पर। आगे बढ़ेंगे, एक गाना प्ले करेंगे और फिर एड ब्रेक और फिर शो की जो एक आखिरी रिपोर्ट था उसका दूसरा भाग हम आपके लिए प्ले करेंगे। SBS हिंदी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नबील और अब आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे एड्स, कुछ एड्स। एड ब्रेक का वक्त हो गया, उसके बाद वापस आके कुछ गाने और अनीता जी की रिपोर्ट का एक आखिरी अंश। SBS हिंदी पर एक बार फिर से जुड़ने के लिए शुक्रिया। मेरा नाम है नबील और अब जो हमने अनीता जी की रिपोर्ट आपके लिए प्ले करी थी कुछ देर पहले उसका दूसरा और आखिरी अंश सुन लेते हैं, जिसमें बात हो रही है संतोष गुप्ता जी से और उन्होंने वहाँ 20 साल पहले कैनबरा में हिंदी स्कूल की शुरुआत की थी। उसी पर प्रस्तुत है अनीता जी की ये रिपोर्ट जो 2 भाग में थी। आइए सुनते हैं इसका दूसरा और आखिरी अंश।
SBS हिंदी पर मैं हूं अनीता बरार और आज हम बातें कर रहे हैं कैनबरा में हिंदी स्कूल के संस्थापक संतोष गुप्ता जी और नवीं क्लास के आत्रेय गोयल जी के साथ में। आत्रेय जी से मैंने पूछा था कि भारत में उनकी पसंदीदा जगहें कौन सी है।
मेरे खास पसंद मामा पापा का घर पे।
बॉलीवुड फिल्में भी देखते हैं?
हाँ, मेरा फेवरेट फिल्म है हैप्पी न्यू ईयर। आपको पता क्या है वो?
हाँ, और बिना सब,
मैं बहुत बिना सब टाइटल्स का मेरे पूरा आधा मूवी याद हो गया।
अरे वाह क्या बात
क्या बात है
मूवी देखते
यानी
देखते कुछ लाइन बोल देते हैं।
अच्छा एक बात और आपसे ये पूछना चाहूंगी, जब आपने शुरू किया था हिंदी बोलना।
मेरे को तो याद है कि पापा के पास फ्लैश कार्ड्स थे और
हाँ
पूरे हिंदी अल्फाबेट का,
हाँ
तो अ से अनार, तो उससे मैं सीखा था। तो पूरा,
हाँ
और अभी भी कुछ शब्द नहीं याद है तो वैसे याद,
हाँ
श और श वैसे याद करता हूं मैं।
क्या बात है। तो यानी बचपन से सीख लेना कितनी अच्छी बात है। और दूसरी भाषा जब आप सीखते हैं तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी और चीजें सीखने को मिलती हैं और संपर्क तो बढ़ता ही है। तो संतोष जी, आप किस तरह से अपने समुदाय को इस बात के
जी
लिए प्रेरित कर पा रहे हैं कि हिंदी जो है वो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाई जा सके, तो इसके लिए चुनौतियां क्या आ रही हैं, कैसे आप उनको इसकी तरफ ला पा रहे हैं?
अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया काफी जो है बहुत तेजी से एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। अभी जैसे दो कल्चर, दो कंट्रीज का, हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया का काफी जो संस्कृति कल्चरल डिफरेंस है उसमें जो है पास लाने में, जो सांस्कृतिक और या व्यापारिक और जो शिक्षा के क्षेत्र में अगर एक दूसरे को गठबंधन करना है, तो हिंदी जो कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारत में, और हिंदी का सबसे बड़ा जो चीज है, एक भाषा है जिसके साथ सारे लोग भारत के और भारतीय मूल के जो दूसरे देशों में है जो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ बातचीत, तो वो एक केवल हिंदी ही है। बिकॉज अगर हिंदी को जब तक नहीं समझ पाएंगे तो वहां की जो जैसे कोई पॉलिटिकल जो वहां पे क्या पॉलिटिकल है या सामाजिक जो गतिविधियां हैं और जो वहां का जो है इकोनॉमी है उसको जोड़ने, उसके साथ अगर आपको जोड़ना है ऑस्ट्रेलिया के लोगों को या ऑस्ट्रेलिया और भारत के लोगों को ऑस्ट्रेलिया के साथ जोड़ना है, वो बहुत जरूरी हो गया है। आजकल जैसे जो डीफेट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड ट्रेड, यहाँ पे पिछले 6-7 सालों में संख्या बहुत बढ़ गई है। जैसे कि भारत ने भी यहाँ पर जगह जगह ऑस्ट्रेलिया में अपने काउंसुलेट्स खोले हुए हैं ऑस्ट्रेलिया ने भारत में, और वो लोग जब यहाँ से जाते हैं तो वो यहाँ पर से हिंदी सीख कर जाते हैं। तो आजकल तो मेरे को बहुत आसान हो गया है और लोग बहुत उत्साहित होके, केवल स्कूल में अभी मेरे पास बहुत सारे जो है लोग आते हैं संपर्क करते हैं कि क्या आप बड़ों को भी सिखा सकते हैं।
जी, मैं आपसे यही पूछना जा रही थी कि आज के दौर में जो बड़े लोग हैं, जो राजनीतिक हैं या सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं, वो किसी भी सोर्स से हिंदी सीख सकते हैं, लेकिन स्कूलों में उसकी पढ़ाई क्यों आवश्यक है?
जैसे कि आप देखिए कि अगर बच्चा जो है शुरू से सीखता है कोई भी
जी
भाषा तो
जी
वो उसको बहुत आसान होती है। एक कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बच्चों को शुरू से मिलेगी तो उसके लिए हमारा प्रयास है। यहाँ की जो सरकार है उन्होंने भी एक सर्वे कराया था लास्ट ईयर, और ये एक चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा हो गई है। उसके बेसिस पे वो लोग तैयारियां कर रहे हैं कि हमको जो है और भाषाओं की तरह हिंदी भाषाओं को भी स्थान देना चाहिए।
जी अभी किस स्थिति पर पहुंचे हैं आप?
अभी सर्वे का जो हमारा रिजल्ट्स आए हैं उनको वो लोग थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं कि किस स्कूल में हिंदी की शुरुआत हो। सर्वेक्षण का जो हमारा परिणाम है उसको देख रहे हैं।
तो क्या उम्मीद है, कब तक ये हो सकता है?
देखिए, मेरे को तो बहुत उम्मीद थी कि शायद इस साल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब जैसे कोई भी योजनाएं होती है उसमें थोड़ा सा समय लगता है। मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगले साल से जरूर किसी स्कूल में एक जगह हिंदी शुरू हो जाएगी।
क्यों रात्रे, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? काफी मिलेंगे लोग पढ़ने वाले, छोटे बच्चे क्या आएंगे?
ये क्योंकि स्कूल में के विकली में हो जाता है, करिकुलम में है, मैं सीख लूंगा ये थोड़ा देर के बाद। ओ, मेरे को ये अच्छा लगता है, और उसके बाद विलिंगनेस आप लर्न हो जाएंगे।
चीज और बोलना चाहूंगा अनीता जी, मैंने देखा है जब यहाँ पर एक नाराबंडा कॉलेज है कैनबरा में, वहां पर हिंदी और भाषाओं की तरह पिछले कई दशकों से सिखाई जा रही है, तो हमारे जो भारतीय मूल के जो विद्यार्थी आते थे वो उन्होंने हिंदी लिया ईयर 11-12 में, क्योंकि वहां पर तो है, लेकिन जो नीचे नहीं है कोई भी प्राथमिक विद्यालय या हाई स्कूल में हिंदी नहीं है। तो जो अभी आपका पहला प्रश्न से पहले जो था, उसके लिए अगर बच्चे को ईयर 11-12 में हिंदी सीखना है तो अगर उसकी जो शुरुआत है वहां पर हो, पूरे कैरिकुलम के साथ हो, जैसे कि अभी जो कैनबरा हिंदी स्कूल है अभी केवल एक ही विद्यालय है जिसके बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं, और वो नारबंदा में ईयर 11-12 में। तो दिस एक जो रीजन है हम लोग जो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत सालों से, तो उससे जो नए विद्यार्थी है उनको बहुत अच्छा एक आधार मिलेगा।
जी, तो इंतजार करेंगे, ये शुभकामनाएं हमारी रहेंगी। आत्रेय, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ SBS और आपका सबसे ज्यादा, ये एक हिंदी के लिए आपका जो समर्थन है, ये सहयोग है, आप जो वर्षों वर्षों से आप हिंदी के साथ और हिंदी की सेवा में जुड़े हुए हैं, और मेरा तो बहुत ही छोटा योगदान है।
एस बी एस हिंदी पर एक बार फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं तो कुछ मैसेजेस जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्लाइड जी, क्लाइड से ब्रजेश जी हैं जिन्होंने अपनी पूरी लिस्ट भेज दी अपने पसंदीदा मूवीज की। वो लिखते हैं, अंदाज अपना अपना, शोले, गोलमाल, हेरा फेरी, हंगामा, हलचल, थ्री इडियट, ये सारी मूवीज ऐसी हैं जो मैं कई बार 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 देखना पसंद करूंगा। 04397997667 पर आप भी अपना जल्दी से संदेश भेज दीजिए शो खत्म होने से पहले और हम उसको पढ़ेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है एक गाने का, ये गाना आपके लिए प्ले कर रहा हूँ और कोशिश है कि इस गाने के बाद एक सॉन्ग रिक्वेस्ट भी आई थी उसको भी आपके लिए प्ले किया जाए। तो 04397997667 पर इंतजार है आपके मैसेजेस का। एसबीएस हिंदी पर आज मेरे साथ शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है नबील। एक आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं। जफर जी लिखते हैं कि मेरी फेवरेट मूवी है दिलवाले और माई फ्रेंड ऑफर्स अ फ्री डिनर टू एनी ऑफ अवर फ्रेंड इफ ही एग्रीज टू वॉच दिलवाले मूवी विथ हम। तो अगर दिलवाले उनके साथ कोई देखने का वादा करता है तो वो डिनर में भी ले जाने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे मूवीज़ के आज रिकमेंडेशन आई और बड़ा मज़ा आया कि सबने अपनी अपनी पसंदीदा मूवीज़ बनाई और इतनी सारी हो गई कि शायद मेरे लिए वो पूरी लिस्ट पढ़ना अब मुश्किल होगा। लेकिन एक आखिरी गाना पीयूष जी का रिक्वेस्ट आया था उसके साथ ख़त्म करेंगे। फिल्म कुर्बानी मूवी से वो कहते हैं कि आप जैसा कोई गाना प्ले कर दीजिए। तो आपसे मिलूंगा बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया नबील के साथ जुड़े रहने के लिए। SBS हिंदी पर अलविदा और एक खूबसूरत शाम एंजॉय करिए।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।